ان مہان جن چلے ہمارے جھان منگل مے منگل کرن بیت راگ وگیان نمو تا ہی جاتے بھئے ارہنتا دیوان موکش مارگ پرکاشک چوتھا ادھیائے پشٹھ نمبر 78 پر سے چرچا آرمبھ کرنی ہے. اس کی چرچا اپن نے آرمبھ کی تھی اور دو ویاخیان سدھ چکر منڈل ودھان کے افسر پر ہوئے تھے, اس لیے اس کی پور پیٹکا کے روپ میں وہ ویاخیان ہوئے تھے. ان کی چرچا میں دوبارہ یہاں نہیں کروں گا, لیکن ایک بات اتینت مہتوپورن ہے جو اس کا کی طرف آپ کا دھیان میں آکرشت اوشیہ کرنا چاہوں گا. وہ ریپیٹ بھلے ہی ہوگی لیکن سمجھنے لائق ہے. تو پنڈت ٹوڈرمل جی صاحب نے موکشمار پرکاشک آرمبھ کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے نموکار منتر کے مادھیم سے پنچ پرمیشٹی کو یاد کیا, اور نہ کیول یاد کیا نمسکار کیا بلکہ ان کے سروپ پر پرکاش ڈالا. ایسا بہت کم گرنتھوں میں دیکھنے میں ملتا ہے. بھگوان کو ہم یاد تو کر لیتے ہیں لیکن ارہنت کیا ہے, سدھ کیا ہے, آچاری کیا ہے, اپادھیائے اور سرو سادھو کیا ہے. اور بعد میں انہوں نے گرنتھ رچنے کی پرتیجا کی, تو اس پرتیجا میں اس بات کو پرشن اٹھایا کہ میرا یہ گرنتھ پرمانک ہے, ایک کیسے مانا جائے. گرنتھ کی پرمانکتا کی چرچا کی. وہ آج کے سندرم میں ہمارے لیے بہت اپیوگی ہے. جتیش بھائی کس ارتھ میں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا مکند بھائی کہ مجھے آتما کا انوبھو ہے اس لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ساری پرمانک ہے اور تم پرمانک ماننا, ایسا نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بات میں اس گرنتھ میں لکھنے والا ہوں وہ بھگوان سروگ پرماتما کی دیویہ دھنی سے آئی ہوئی بات ہے, گندھر دیو کے دوارا گوتھی ہوئی دوادشانگ وانی ہے اس کی بات ہے, اور آچاری پرمپرا سے ہمارے گرو پریمت جو پرمپرا اکھنڈ چلی آئی اس کی وہ بات ہے, اور اس کی وجہ سے یہ بات کو پرمانک ماننا. اور ان نے بہت بحث بھی کی کہ بیچ میں یدی لوگوں نے اس میں غلط باتیں ملا دی ہوں تو اس کا کیا, 2500 برس تو بہت لمبا کال ہے بھگوان مہاویر کو موکش گئے, پاپی پرسوں نے کھوٹی باتیں ملا دی ہوں, اجانیوں نے ملا دی ہوں, غلطی سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوں سیوپ سمجھان سے تو ہم غلط سمجھ لیں گے. تو انہوں نے سدھ کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یدی کسی سے ہوگی تو آگے جو گیانی جن ہوتے ہیں اس کو بات کو آگے پرمپرا چلنے نہیں دیتے ہیں اور اس کا نشید کر دیتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے اس بات کو سدھ کیا. اب آپ کہیں کہ آج کے سندرم میں یہ بات مہتوپورن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے ہی ایک ورگ ایسا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بات پرمان ہے کیونکہ میں آتمانوبھوی ہوں, اور لوگوں کی بات پرمان نہیں ہے کیونکہ انہیں آتما کا انوبھو نہیں. یہ الگ مدعا ہے کہ کسے آتما کا انوبھو ہے اور کسے نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. ایسا تو پرتیک آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے آتما کا انوبھو ہے اور تمہیں نہیں. آپ کہہ سکتے ہو, میں بھی کہہ سکتا ہوں. اور ایک آدمی کے لیے 10 آدمی کہتے ہیں کہ آتما کا انوبھو اسے ہے, اور دوسرے 10 کہتے ہیں کہ نہیں ہے. ایک آدمی کو اور 50 کہنے والے مل جائیں گے کہ انہیں آتما کا انوبھو ہے. تو اس کا بھی پرمانیکرن ہونا بہت مشکل ہے کہ کسے ہے اور کسے نہیں ہے. यदि इस विवाद को हम खड़ा करेंगे तो विवाद के अलावा हमारे हाथ और कुछ नहीं लगेगा, यानी हम किसी निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति अनुभवी है कि नहीं है, इस आधार पर जिनवाणी की प्रमाणिकता है ही नहीं। जिनवाणी की प्रमाणिकता तो आचार्य कुंदकुंद के आधार पर भी नहीं है, तुम तो तुम्हारी बात करते हो। वो तो कहते हैं, कुंदकुंद भी कहते हैं कि केवली शुद्ध केवली भणिदम, केवली और श्रुत केवली के द्वारा कही हुई बात मैं आपको कहता हूं। और उन्होंने खुद कहा कि हमारे गुरु पर्यंत ये बात चली आई भगवान महावीर से अखंड परंपरा के रूप में। मेरे कहने का अर्थ है कि उसकी प्रमाणिकता का आधार एकमात्र सर्वज्ञ की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है, इसलिए ये बात सत्य है। और इसलिए फिर ये बात हो जाती है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो आज तक हमारा जो जनागम हमें प्राप्त है प्रमाणिक रूप से, उसकी कसौटी पर सही उतरना चाहिए। क्या नरेंद्र जी? यदि वो सही नहीं उतरता है तो वो अप्रमाणिक है। आप अनुभवी हैं कि नहीं है इससे कुछ मतलब नहीं। इसमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अनुभव है कि नहीं है। पर हमने तो इस बात का यहां तक दुरुपयोग किया कि ये बिल्डिंग कैसी बने, इसमें कितना सीमेंट कंक्रीट डाला जाए, इसको भी हमने कह दिया अनुभवी से पूछ लो, उसकी बात को प्रमाणित कर ले। इंजीनियर की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने हर बात छींकने का काम भी, झाड़ू लगाने की व्यवस्था को भी अनुभवियों का सिक्का लगा लगा करके हमने चलाने की कोशिश की, जबकि जिनवाणी की ये आज्ञा है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले ही अध्याय में ये सिद्ध किया गया है कि कोई और व्यक्ति, देखो उसके बाद सर्वज्ञ के बाद भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के बाद अनेक श्रुत केवली हुए, लेकिन उन्होंने भी यही कहते केवली भणदम, केवली ने कहा है हम तो उसको कह रहे हैं। वे तो आत्मानुभवी थे ही ना, आत्मानुभव के बिना तो कभी कोई श्रुत केवली होता ही नहीं है। क्यों? कुंदकुंद आत्मानुभवी थे कि नहीं थे? लेकिन वे नहीं कहते कि मेरी बात इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि मैं कुंदकुंद कह रहा हूं। वे कहते हैं कि केवली श्रुत केवली भणदम इसलिए प्रमाणिक है। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञानी की वाणी देशना लब्धि में निमित्त होगी कि अज्ञानी की वाणी, है ना? तो फिर वही चक्कर खड़ा हो जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। कपूरचंद जी, है ना? तो वो ये कहते हैं भाई साहब कि ये तो केवली तो ज्ञानी है ना, ये वाणी तो उनकी है और वो निमित्त होती है। भाई साहब तुमसे उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए एक जगह ऐसा भी आता है पहले कहीं उसने सुना हो व्याख्यान और वो कोई अज्ञानी के मुख से भी सुने, लेकिन वो जिनवाणी की सच्ची बात सुने तो उसे उससे भी उसका संबंध की प्राप्ति हो जाती है। आता या नहीं आता है? क्योंकि उसका आधार तो वो सर्वज्ञ की अनुसारणी है। कलश टीका में लिखा है कि ये वाणी सर्वज्ञ के अनुसारणी है, ज्ञान के अनुसार, यद्यपि जड़ है लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसारणी है, इसलिए इसकी प्रमाणिकता है। ये अपने आप में ऐसा प्रकरण है कि जिसमें ये विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि ये बात प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक है, कभी इस पर झगड़ा हुआ तो उसकी अदालत की कसौटी, वो पुरानी जो आज तक की जनवाणी है कुंदकुंद से लेकर समझ लीजिए कांजी स्वामी तक की, तो वो जनवाणी को ही आधार बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे अनुभव में ऐसा देखा है और इसलिए मेरी बात प्रमाणिक मानो, तो ये नहीं माना जाएगा। उसके आधार पर ही ये डिसीजन होगा। कभी यदि मतभेद का मुद्दा सामने खड़ा हुआ, कोई भी किसी भी विषय में, तो उसका डिसीजन करने के लिए वो सर्वज्ञ की वाणी जो उपलब्ध जनागम है उसको ही प्रमाण मानना पड़ेगा। एक बात और ये कोई पंचायत बैठाने की चीज तो है ही नहीं कि बैठ के डिसीजन बनाया करें, ये शायद बात सच्ची हो दी और अदालत में फैसला दे दिया कि सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार साहब ये बात सही हो, इनकी झूठी है। इन सब का फैसला प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होगा और उसका स्वयं का किया फैसला उसके काम आएगा। क्या हम मेरा फैसला आपके काम नहीं आएगा सोमन भाई, और आपका फैसला मेरे काम नहीं आएगा पंडित, तुम सोच समझ के बता दो और हम तो आपकी बात मान लेंगे और काम हो जाएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। यदि आपकी कसौटी ही गलत हो गई, कसौटी गलत हो गई माने कसौटी तो यह है कि सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार वो बात होना चाहिए और आपने मान लिया कि नहीं हम तो ज्ञानी की वाणी को प्रमाण मानते हैं, अनुभवी की वाणी को प्रमाण मानते हैं, इसलिए हम इसकी बात मानेंगे और आगम के आगम देगा तो आगम को रिजेक्ट कर देंगे, तो आपकी कसौटी ही गलत हो गई, इसलिए आप तो गारंटी से गलत निर्णय पर पहुंचने वाले हैं। ये बात ग्रंथ की प्रमाणिकता वाले प्रकरण में बहुत ही गंभीरता से पंडित टोडरमल जी ने सिद्ध की है, और हमने उनकी बात को जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया और आज्ञा नहीं मानी वो विवाद में ही उलझ के रह गए और उनके द्वारा प्रतिपादित विषय वस्तु भी विवाद का विषय बन करके रह गई। और टोडरमल जी ने जो कहा था कि यदि कोई आदमी फिर भी ऐसा चलाएगा तो अन्य ज्ञानी जन उसे चलने देंगे नहीं, इसलिए वो परंपरा नहीं चल पाएगी, वो परंपरा विच्छिन्न हो जाएगी और मूल परंपरा चलती रहेगी, और प्रमाणिकता का उनने आधार बनाया। इसलिए जो आगम के विशेषज्ञ हैं और आगम में जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, एक तरह से पंडित टोडरमल जी ने उनके लिए एक जिम्मेवारी सौंपी कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम किसी भयासा स्नेह और लोभ के बस से लगा था भय आशा स्नेह और लोभ, भय इस बात का भी हो सकता है कि मिशन टूट जाएगा, अकेला भय इसलिए कि हमें जान से मार देगा, इसी का भय होता है कि साहब काय का भय है, इसका भी तो भय हो सकता है ना, मैं तो चुप हूं क्योंकि मेरे तो मिशन टूट जाएगा नहीं तो दो टुकड़े हो जाएंगे है? आशा भी हो सकती है कि आज नहीं ये कल सुधर जाएगा, लेकिन जब तक वो सुधरेगा तब तक कितने लोग गड्ढे में गिर जाएंगे, क्यों इसकी क्या गारंटी है? 20 सड़क में म्युनिसिपैलिटी सुधारने इतना बड़ा गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी गिरे तो मरे बिना रहे नहीं, वो एक्सीडेंट हुए बिना रहे नहीं, कि साहब आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को अकल आएगी, लेकिन जब तक अकल आएगी तब तक जितने लोग मर जाएंगे उसका कौन जिम्मेवार होगा? इसने से क्या हमारा 25 साल पुरानी दोस्ती है वो दोस्ती टूट जाएगी, इसके भय से वो चुप रह जाए, और लोभ से लोग इस बात का भी हो सकता है कि मेरी दोस्ती न टूट जाए, मिशन न टूट जाए, और कई बातें का हो सकती है। मेरे कहने का मतलब पैसे का लोभ लोभ नहीं है, पैसे का लोभ तो कृत्रिम है, और 50 तरह के लोग होते हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति उस बात का ख्याल नहीं करके यदि वो गलत परंपरा है तो उसका निषेध करना अत्यंत आवश्यक है। और प्रत्येक आदमी जब तक कसौटी कम से कम सही उसके ख्याल में आनी चाहिए, और इसलिए उनने कह दिया प्रमाणिकता का आधार क्या है, और इसीलिए हमारे सब लेखकों ने बहुत बड़ी बात लिखने के बाद में भी यहां तक और हर जगह ये लिखा कि भाई चुक्किज छलम न घेतव्यम अक्षर मात्र पदस्थीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम है ना, मम क्षंतव्यम मुझे माफ कर देना, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल, सुधि लोग सुधार करके पढ़े, ये सब बातें उन ज्ञानियों ने स्वयं डाली हैं कि जिससे वो परंपरा अविच्छिन्न रहे। टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक अध्याय पूरा का पूरा इसके लिए समर्पित कर दिया, और 20 पेज में पंच परमेश्वरी का स्वरूप और ग्रंथ की प्रमाणिकता वक्ता श्रोता कैसा होना चाहिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए पढ़ने लायक, उसकी चर्चा में ही एक अध्याय समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने एक नई स्टाइल अपनाई जो पुराने जमाने में वैद्य लोग अपनाया करते थे। आज की पद्धति में बदल गई है, पहले वैद्य आता था और मरीज कहता था मेरे पेट में दर्द है, तो कहते चुप रहे, तुझे कहां क्या दर्द है तू मत बोल, मैं बताऊंगा, और उसकी नाड़ी हाथ में लेकर और नाड़ी देखकर बताता था कि तेरे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, सोते वक्त ऐसा हो जाता है, सुबह वोमिटिंग होती है, फिर ऐसा लगता है, वो सारी बातें वो वैद्य बोलता था। तो ऐसा क्यों करता था? इसलिए करता था कि उस मरीज को ये विश्वास पैदा हो जाए कि वैद्य ने नाड़ी देखकर मेरी बीमारी पहचान ली है, तो जरूर ये होशियार वैद्य है और ये जो दवाई देगा उससे मेरी बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगी, क्योंकि दर्द कहां कहां और कैसा कैसा है ये वैद्य मरीज को बताए, उससे जाना तो मरीज जानता है, क्योंकि मरीज तो अनुभवी है, वैद्य तो नाड़ी का अनुभवी है और वो दर्द का अनुभवी है, उसने दर्द को भोगा है, भोग रहा है, तो ये बताने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ इसलिए बताया जाता कि तेरे को दर्द कहां कैसे किस कारण से हुआ, तो वो कहते पहले ये बताता कि तेरे दर्द क्या है, फिर ये बताता कि ये दर्द क्यों हुआ कि तूने ये बद परहेजी की, और जब उस पर वो कहता कि हां साहब आप सही कह रहे हैं 100%, तब ये कहते हैं कि अब हम तेरे को जो उपाय बताते हैं वो करेगा तो तू अवश्य सुखी हो जाएगा, तो वो श्रद्धा के साथ में उस उपाय को करता है। वो टोडरमल जी कहते हैं कि मैं पहले बताना चाहता हूं कि तुम्हें दुख क्या है, तो उन्हें दूसरे अध्याय में ये सिद्ध करने, दूसरे तीसरे अध्याय में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि तू दुखी है, ये सिद्ध किया, और फिर ये कहा है तेरे दुख के कारण क्या है, दुख का स्वरूप बताया, तो आठ कर्मों के उदय में किस प्रकार के दुख होते हैं वो बताए, कर्मों के उदय के अनुसार दुख बताए, चार गतियों के हिसाब से दुख बताए, पांच इंद्रियों के विषय सेवन आदि के हिसाब से दुख बताए, और ये सिद्ध कर दिया कि तू दुखी है और तेरा दुख क्या है। अब चौथे अध्याय से जहां से अपन को बात शुरू करनी है आदमी जी, वो चौथे अध्याय से कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या बद परहेजी तुमने की जिसकी वजह से ये दुख हुआ है, और उसका शास्त्रीय भाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का सेवन तुमने किया, ये बद परहेजी की असली, और वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जिनको एक नाम से कहो तो मिथ्यात्व कहते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब पंडित टोडरमल जी मिथ्यात्व कहते हैं तो उसका अर्थ अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है, और जब वे सम्यक्तु कहते हैं तो उसका अर्थ अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसका अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। तो आ माने तो भाव होता है, भाववाची है, तो मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व, सम्यक भाव माने सम्यक्त, इस भव तरु के मूल है जानहु मिथ्या भाव, मिथ्या भाव माने मिथ्यात्व, और नीचे भेद किए तीन किए, तो वो कहते हैं कि मिथ्यात्व एक नाम बोलेंगे मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। अगृहीत और गृहीत में अंतर क्या है कि अगृहीत माने जिसे हमने ग्रहण नहीं किया, जो अनादि से हमारे साथ है, मैंने बिना ग्रहण किया हुआ, और ये गृहीत माने जिसे हमने नया ग्रहण किया है, उसका नाम है गृहीत। जीव तो मिथ्या दृष्टि तो अनादि से है, मिथ्या ज्ञान दर्शन चाहत अनादि से है, और अनादि से ये निगोद में था, और जब तक सेनी पंचेंद्री नहीं हुआ तब तक कोई इसे समझा नहीं सकता और जो उससे समझ नहीं सकता, ये तो अपन जानते हैं ना, नक्की बात है ना। इसलिए जो अनादि से मिथ्यात्व है वो किसी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से नहीं है। अनादि में निमित्त पना की जरूरत नहीं है। निमित्त तो कर्म का उदय तो है ही, लेकिन बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं है। क्या? इसलिए उसे बोलते हैं अग्रहीत। और गृहीत होता है वो सेनी पंचेंद्री के ही होता है और मुख्य रूप से मनुष्य गति में ही होता है और मुख्य रूप से कर्म भूमि में ही होता है। मुख्य रूप से कह रहा हूं मैं, गौण रूप से एक आध जगह कोई केस मिल जाए आपको तो घबराना नहीं, इसलिए क्योंकि इस छह दर्शन है, अनेक प्रकार के धर्म चल रहे हैं, इस स्वर्गों में नहीं चलते हैं, ये नरकों में भी नहीं चलते हैं। और जगह जगह वहां पर कोई मठ मंदिर भी नहीं बने हुए हैं जिनमें जाकर उपदेशक उनको भड़काते हों और उन्हें समझाएं कि देह ही आत्मा है कि देह से भिन्न आत्मा है। न सम्यक दर्शन के निमित्त है, न मिथ्या दर्शन के निमित्त है। यदि वो आते हैं देव कहीं सम्यक दर्शन के निमित्त में, तीर्थंकरों के समोषण में यही आते हैं, यही उनको उपदेश मिलता है। वहां स्वर्गों में नहीं है ऐसी व्यवस्था, ख्याल में नहीं। नरकों में तो होने का सवाल ही नहीं है, तुरंत गति में ही तो आप देख ही रहे हो कहां है, कौन किसे समझाता और कौन किसे समझता है। अब कहते चांदीधारी मुनियों ने शेर की पर्याय में शेर को समझाया था, ऐसा छोड़ देना एक आध केस, ख्याल में आए ना। लेकिन आखिर वो मनुष्य नहीं तो समझाया, पशु ने पशु को तो नहीं समझाया। वैसे तो पशु भगवान के समोषण में भी जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मुख्य रूप से मनुष्य गति में है और भोग भूमि में तो भोगों की प्रधानता है, वह कर्म की प्रधानता ही नहीं तो धर्म कहां से आएगा। इसलिए एक कर्म भूमि का ही यह गृहीत मिथ्या दर्शन का सारा चक्कर है। चौथे अध्याय में अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन है और पांचवें अध्याय में और छठवें में और सातवें में तीन अध्यायों में गृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन है। पांचवें अध्याय में उन गृहीत मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है जो जिन्हें जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं है, असली जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं है, समझो दिगंबर धर्म स्वीकार ही नहीं है। सातवें छठवें अध्याय में के जो दिगंबर हैं, अपने को दिगंबर मानते हैं, दिगंबर आचार्यों में श्रद्धा रखते हैं, फिर भी भूत प्रेत जेतपाल पद्मावती और न मालूम किस किस के चक्कर में उलझे हैं, बिंतरादिक के चक्करों में उलझे हैं, ऐसे गृहीत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, देवी दहाड़ी के सब चक्कर में उलझे हैं, उनकी चर्चा उन्होंने छठवें अध्याय में और सातवें अध्याय में उन्होंने कहा कि जो इन सबसे दूर हैं और शास्त्राभ्यासी हैं और शास्त्र पढ़ करके भी और सुगुरुओं दिगंबर संतों के समागम में रहते हैं और फिर भी उल्टी सीधी बातों को समझ के और अपने उल्टी मान्यता का पुष्ट करते रहते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का वर्णन सातवें अध्याय में किया। मैं समझ लो पंडित, पंडित का मतलब कोई प्रवचन करने वाला पंडित नहीं कि शास्त्री नहीं, मैंने जैन धर्म के स्वाध्यायी है, फिर भी वो सम्मा दर्शन की नि प्राप्त किया मिथ्यात्व की भूमिका में है और वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, मैंने ऐसी बातें मानते हैं जो उनने नई सीखी है, नई अनादि से नहीं थी, इसलिए वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। और ये बात मैंने अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तित्व में सिद्ध की है और सबसे पहले गुरुदेव श्री को फतेहपुर पंच कल्याणक में मैंने बताई थी, क्योंकि वह पहले चर्चा यही चलती थी कि सातवां अध्याय अगृहीत मिथ्या दृष्टियों का है और छठवां अध्याय और पांचवां अध्याय गृहीत मिथ्या दृष्टियों का है, क्योंकि ऐसा माना जाता था तब तक लगभग सभी लोगों को कि अगृहीत माने जैनियों का और गृहीत माने अजैनियों का, जो अपने को जैनी मानते हैं वे अगीत मिथ्या दृष्टि है, और जो अपने को जैनी नहीं मानते हैं वे गीत मिथ्या दृष्टि है, ऐसी मान्यता, बंटवारा ऐसा था। तो गुरुदेव को बहुत आनंद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपने प्रवचनों में भी उसकी चर्चा की कि ये सही बात है, कि ये बंटवारा सही है। मैं आपको बोलता हूं, पहले ये चलता था, लेकिन इसमें टोडामल जी से ही सिद्ध किया, इनकी बातों से ही मैंने ये बात को सिद्ध किया कि अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है, जिसमें देवसास गुरु का निमित्त नहीं है, वो गुरु को देवसास का निमित्त नहीं है। छड़ाला में लिखा, हमारा ध्यान नहीं जाता है, लिखा ना, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोहे। जो चिर माने अनादिकाल का, जो दर्शन मोहे माने मिथ्यात्व है, उसको कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के माध्यम से जो पुष्ट करता है, उसका नाम ग्रीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र। तो अनादिकालीन है और उसे पुष्ट करता है, और जो निसर्ग माने स्वभाव से ही, माने जन्म से ही देह में एकत्व बुद्धि है, वो अगीत मिथ्या दर्शन है। इसको कोई अगीत समझते ही नहीं था, इसको तो कोई मिथ्या दर्शन ही नहीं समझता था। शरीर तो अपना है ही, और बाल बच्चे भी अपने हैं ही, बस इन्हें छोड़ना है, ये तो सब मानते थे, ख्याल में है ना। इसने कहा था मिथ्या दर्शन है, और देवी तिहारी को पूजने गए और जैनेतर मंदिरों में चले गए तो गीत मिथ्या दृष्टि हो गए, और वहां नहीं गए क्या, और यहां पर क्षेत्रपाल पद्मावती को पूजने लग गए तो अगीत हो गए, ऐसा ऐसा बंटवारा चलता था क्या। तो हमने उस शिविर में, जो अगस्त वाला शिविर था, उसमें वो जैनियों वाले गीत मिथ्या दृष्टियों की, सात तत्वों की भूलों की चर्चा की थी, है याद आपको। और अभी वो अनादिकालीन सात तत्वों की भूल कैसे हमसे हो रही है, उसकी चर्चा अपन 78 पेज में चौथे अध्याय में करने जा रहे हैं। इतना समय मैंने आपका इस बात में लिया कि हम कहां खड़े हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 78 पेजों में हम आ गए, 78 में तो 77 पेजों में क्या है, आगे क्या है, और यहां हम कौन से स्टेशन पर खड़े हैं, इसकी चर्चा मैंने आपको की। वैसे मैं दो व्याख्यानों में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए संक्षेप में की। अभी जिनको वो जानना हो तो दो कैसेट यहां होंगे, सब बने हैं, बीए डीओ ओडीओ सब बना है, वो ले सकते हैं। अभी इसके बाद हम आगे से बात शुरू करते हैं। बहुत मार्मिक है ये, कम से कम दो पेज बहुत मार्मिक है, और ये दो पेज में समझता हूं हो जाए अपने 10 दिन में तो बहुत अच्छा है, हो जाएंगे। यहां कोई प्रश्न पूछे कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है, ये प्रश्न कैसे आ गया कि पीछे आचार्य देव ने ये कहा था, पंडित जी ने ये कहा था कि हमको प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में सही जानना चाहिए, और अनादिकाल से प्रयोजन भूत सात तत्वों के बारे में हमारी भूल रही है, ख्याल में आए ना। तो उन्होंने कहा कि प्रयोजन भूत तत्व क्या है, मुद्दा क्या उठाया था इनने पंडित जी ने कि भाई जाने बिना सिद्धांत सच्चा कैसे होगा, जानना तो पड़ेगा, तो क्या जाने और क्या नहीं जाने, जानने को तो लोकालोक पड़ा है, और हम कितना जान सकते हैं। यदि जाने बिना तत्व का निर्णय सही नहीं होगा, सम्मा दर्शन नहीं होगा, तो पहले केवल ज्ञान होगा फिर सम्मा दर्शन होगा तुम्हारा। तो उन्होंने कहा था भाई साहब घबराओ मत, उस सारी दुनिया को जानने की बात नहीं है। तो किसे जानने की बात है संजीव, तो ऐसा नहीं कहा कि आत्मा को जानने की बात है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। हम सब ऐसी इसी लेन वाले बैठे ना, सारी दुनिया को नहीं जानना है, अकेले अपने आत्मा को जानना है। पंडित जी नहीं कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि प्रयोजन भूत तत्वों को जानना है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वधेतन माही विपर्यत, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो जानना है तो समझने के लिए प्रयोजनभूत सात तत्वों को जानना है मनोहर लाल जी। घी की दुकान करनी है ना तो काय का ज्ञान चाहिए, कपड़े का, सोने चांदी का, इतिहास का, भूगोल का, नहीं साहब इसकी क्या जरूरत है, और घी की दुकान करने के लिए घी का दुकान ज्ञान चाहिए, ठीक है ना मानिकचंद जी, क्या नहीं ठीक नहीं है, कपड़े का तो नहीं चाहिए, सोने चांदी का भी नहीं चाहिए, जवाहरात का भी नहीं चाहिए, इतिहास भूगोल का भी नहीं चाहिए, लेकिन घी का ज्ञान चाहिए। और जिन्हें धोखे से घी समझा जा सकता है उन पदार्थों का ज्ञान भी चाहिए, अन्यथा हम घी को नाम पर न मालूम क्या बेचते रहेंगे, डालडा बेचते रहेंगे। इसलिए घी में जिस चीज को मिलावट हो सकती है इसलिए उसे भी जानना जरूरत है। तो घी का ज्ञान होना चाहिए और जो जो पदार्थ बे है उन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, दोनों के अंतर का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा का अकेले से ज्ञान नहीं चलेगा, अनादि काल से जिसे तुमने आत्मा समझ रखा है कि ये मैं हूं, मैं माने आत्मा, ये समझ रखा ना देह मैं हूं, तो उसे भी जानना पड़ेगा। तो अकेले आत्मा की बात कहां रह गई, और ऐसा लिखा ना आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से जो रहते हैं वे कुछ भी क्रिया करें उनसे शरीर की तो सूखेगा, कर्म सूखने वाले नहीं है, को छीण करेंगे। तो हम दस उपवास करेंगे परिश्रम में अपना आत्मा फात्मा को बिना सोने से जाने तो हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई कर क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो क्या लाभ होगा कि तुम्हारा 5 किलो वजन कम हो जाएगा, कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं कि जे जे करनी तन करण छीन, वो तन को छीन करेगी। और आज के जमाने में तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है, आज के जमाने में तो वजन कम हो जाए ये भी बहुत बड़ा लाभ है। तो वो ये कह रहे हैं क्यों काय से, मेरा वजन यहां पर उससे नहीं है, मेरा वजन इस बात पर है कि आत्म अनात्म के ज्ञान, आत्मा और अनात्मा, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या नहीं है, ये दो बातें जाननी पड़ेगी। वास्तव में ये आत्मा को ही अस्थि और नास्ति से जानना है, अजीब माने आत्मा ही नास्ति से जाना, अजीब को जाना माने आत्मा को ही नास्ति से जाना, उसका नाम है अजीब का जानना। और आत्मा तो द्रिगुण पर्याय वाले आत्मा को भी आत्मा बोलते हैं ना, मैं सुबह के प्रवचन में इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कहते द्रिगुण पर्याय वाले आत्मा में से भी फिर रागादिक है, उनको भी जानना जरूरी है, भले ही अपनापन स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन वे मैं नहीं हूं इसके लिए तो जानना है, उनका अभाव हो इसके लिए तो जानना है, माने उन्हें भी जानना पड़े, जानने के घेरे में वे भी हैं, अपनापन स्थापित करने के घेरे में नहीं है। अभी सर्वज्ञ भगवान की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही कि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना है तो जानना अवश्य पड़ेगा, और क्या जानना पड़ेगा, कितना कोर्स है, उस कोर्स की बात चल रही है। वैसे अपन ने कोर्स वहां भी बताया था 7वें अध्याय में, याद है, वहां लिखा देव सास गुरु सम्मेदन समय ज्ञान समय चारे प्रमोक्ष मार्ग लिखा था, क्या क्या था, अपना और पराया, क्या ही उपादेय है, वो सब इस तरह से 7 तत्व ही आ गए थे कि इनका जानना आपको जरूरी होगा, उन्हें भी जानना पड़ेगा। और सम्मादर्शन ज्ञान चारित्र जिनके होने पर ये रागादिक जाएंगे उन्हें भी जानना पड़ेगा, और इनके जाने पर जो हालत होगी मोक्ष दशा उसे भी जानना पड़ेगा। माने सात बातें जिसे हम प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं वो जानना पड़ेंगे, उसके जाने बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो उसका क्या था प्रश्न कि जानने को तो सारी दुनिया है, क्या जाने और क्या ना जाने। तो उसके लिए ये कह दिया क्या कि इतना कोर्स है बस तेरा, और इनके मामले में तूने क्या क्या गलती कर रखी है शास्त्र पढ़ के और गुरु के निमित्त से जो गलतियां की थी वो तो बताई थी अगस्त वाले शिविर में, और ये जो गलतियां मां के पेट से ही तेरे साथ आई हैं, अनादि से तेरे साथ आई हैं, वो उन गलतियों की बात है। पहले जमाना था कि जब कोई आदमी बीमार होता था तो इलाज होता था, और आज कहते हैं कि बीमारी हो जाने के बाद इलाज करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, प्रिवेंशन। पहले से बीमारी होए ही नहीं इसका इंतजाम करना ये वास्तव में इलाज है। क्यों डॉक्टर साहब, इसे बच्चा पैदा नहीं होता है और एक पुस्तिका पकड़ा दी जाती है, उसमें लिखा हो जाता है इस महीने में ये टीका लगवाना, इस महीने में ये टीका लगवाना, और मेरे ख्याल से साल भर का होता जाता तो 150 टीके लग जाते हैं। क्यों, कैसे तो कोई बीमारी, कोई बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन कोई बीमारी चेचक नहीं हो, फलाना नहीं हो, फलाना नहीं हो, फलाना नहीं हो, इन सब के टीके लगते कि नहीं लगते, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। इतने जो इलाज करना है, इतनी बीमारी तो वो मां के पेट से लेके पैदा हुआ ऐसा समझ लो आप। और वे कहते डॉक्टर ना हम क्या करें, एक भी आपका पैतृक है, आपके बाप दादे हुए थे उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनको हुआ था, ये तो वहां से आया है, हम क्या करें, तेरे जीन में पड़ा हुआ है ये, अब तो यहां तक आ गया है कि एक जीन को निकालकर बच्चे के और स्टडी करके बताया जा सकता है क्या कि इस बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां होंगी और वो किस उम्र में होंगी, इसे कैंसर होगा कि नहीं होगा, वो 60 वर्ष की उम्र में होगा कि 50 वर्ष की उम्र में होगा, कि वो दांत के पास वो गले में होगा कि पेट में होगा, वो सब उस जीन में लिखा है, एक एक जीन में ये बात लिखी है। किरमद सिद्ध होती ना पक्की, क्यों डॉक्टर साहब इसे, और ज्योतिष भी सिद्ध होता है, वो ज्योतिष हाथ की रेखाएं देख के बताता है, जब हर जीन में वो बात लिखी है तो वो यहां भी आ जाती है, चेहरे पे हर जगह आ जाएगी वो जीन। वो जीन कोई पढ़ने का तरीका है, वैज्ञानिक कई तरीके से पढ़ते हैं, ज्योतिष अलग तरीके से पढ़ता है, शास्त्र के जिन लोगों ने पढ़ी थी उन्होंने सारी पढ़ने की विधियां लिख दी है। तो यहां ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से जो तुम्हारा मिथ्यात्व है वो पंडित टोडामल जी कहते हमने पढ़ लिया है और लगभग सबके एक सा है, और ऐसा मैं कहता हूं कि वो ताकत अकेले टोडामल जी में नहीं, डॉक्टरों में ही नहीं, आप में भी है। देखो मैं आपको बोलता हूं, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे अभी ये बच्चा पैदा हुआ अभी वो एक घंटे का भी नहीं है, तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये लड़का है तो 18 वर्ष की उम्र में इसकी मूछें निकलेंगी, ये लड़की है तो नहीं निकलेंगी, जानते कि नहीं जानते, बोलो 18 वर्ष बाद की बात आज अपन जानते कि नहीं जानते, क्यों बोलो, अपन भी पढ़ना जानते हैं, ऐसा नहीं है अपन मूर्ख नहीं है, हम चेहरा पढ़ना जानते कि नहीं जानते हैं कि इस चेहरे पे मूछे आएंगी कि नहीं आएंगी, हमें 18 वर्ष पहले बता सकते हैं कि नहीं, शांतिलाल जी बता सकते हैं, हमें जान सकते थे कि ये लड़की है तो इसके स्तनों का विकास होगा और लड़का है तो इसके क्या नहीं होगा, नहीं जानते, इसका कल इतना बढ़ेगा, इसका इसके किस तरह किसका विकास होगा, वो फर्स्ट डे से बुढ़ापे तक का हम सब जानते कि नहीं जानते हैं। तो इतनी बातें हम जानते हैं तो कोई आदमी इससे ज्यादा जान सकता है, वो ज्यादा स्टडी किया होगा, जान सकना तो सिद्ध हो गया ना, और वो इन्हीं देह के चिन्हों से। तो ऐसे ही चोरमल जी कहते हैं कि हर एक जीव का एक सही होता है, हर एक मनुष्य का, हर एक लड़की का एक सा विकास होगा ना लड़के का, ऐसे हर एक जीव का एक सही विकास होता है। तो हम बताते हैं तुम्हारे सबकी बीमारी कि अनादि काल से इस जीव ने देह में एकत्व बुद्धि कर रखी है और फिर बहुत बहस की है कि साहब एक इंद्री ने बेचारा क्या समझता है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है एक इंद्री, वो क्या ही देह में एकत्व बुद्धि करेगा, वो ये मानेगा कि मैं गोरा हूं मैं काला हूं क्यों, मेरा इतना किलो वजन है, उन्हें तो कभी कभी मशीन पर चढ़ के ही नहीं देखा कि मेरा वजन कितना है। तो इसमें देखो, आप देखो पेज नंबर 79 है ना, इसमें ऐसा लिखा है कि वो कैसे उसमें एकत्व बुद्धि इसके रहती है। ये पेज नंबर 81 पर है, नीचे देखो, अधिक क्या कहें जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। कौन? एक इंद्री। तो कहते इंद्रियाधिक के नाम तो यहां कहे हैं परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। वो एक इंद्री पेड़ है, पृथ्वी है, जल है, अब वो कैसे मानता होगा कि ये मैं हूं, वो तो बिल्कुल एक इंद्री जड़ अपन समझते, वो तो समझते ही नहीं कुछ। तो उन्होंने सिद्ध किया यहां पर कि वो कैसे मानता है, इसका मैं जब यहां तक आएंगे तो उसका व्याख्यान मैं तभी करूंगा, अभी नहीं। लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि जैसा मिथ्या देह में एकत्व बुद्धि आपकी और हमारी है, ऐसी एकत्व बुद्धि अनादि काल से निगोदिया के भी है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, देखो पेज नंबर 78 पर दूसरा पैरा अपन पढ़ते हैं कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये प्रयोजनभूत बातें क्या हैं? वो कहते हैं जो मुक्ति के मार्ग में जानना है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा बालचंद जी कि 7 तत्व, क्योंकि सीधी तो वो 7 तत्व तो किसी की समझ में नहीं आते ना, शास्त्रीय भाषा हो जाती है। उन्होंने बिल्कुल लौकिक भाषा को रखने की कोशिश की। इसका मालूम क्या है, ये आपा पर का जो अनुवाद कर दिया था, अपना और पराया ऐसा कर दिया था, लेकिन जब मैंने इसे संपादित किया तो इसको फिर पलट के मूल में आपा पर शब्द था, बोई का बोई रखा। अब फर्क क्या आ गया दोनों में, अपना और पराया, इसमें तो ऐसा लगता है कि अपना ज्ञान होना चाहिए और पर का पराया ज्ञान होना चाहिए, और इसका अर्थ यह है कि पर का ज्ञान नहीं चाहिए, पर में परायेपन का ज्ञान चाहिए। आपा पर में ये भाव है, आपा माने आत्मा नहीं, आपा माने ये मैं हूं, ऐसा जानने पूर्वक आत्मा का जानना, और ये मैं नहीं हूं, बस इतना जानना, ये पर का जानना। ये पर क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है क्या? देह पर है और आत्मा निज है, तो आत्मा को जाना और ये मैं हूं ये जानना चाहिए साथ में, और देह मैं नहीं हूं तो देह क्या है, कितने खून से बनी है, कितना मांस है, कितनी हड्डियां हैं, कैसी हैं, ये सब डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। उसको तो सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूं, यानी इससे अपना काम बहुत हल्का हो जाता है, है ना। अपन अपने अपने बच्चे को खोजने निकले तो 10-20 बच्चों को देखा तो अपने बच्चे को पहचानना है कि ये मेरा बच्चा है, और उसे घर पर लाना भी है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ इतना जानना है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, बाकी उनके बारे में कुछ नहीं करना है और डिटेल कुछ नहीं जानना है। और हम क्या समझे कि सौ और पर दोनों को एक साथ जानना है, तो पर के जानने में उलझ गए कि भाई साहब नहीं है। क्यों नहीं है? कि अजीब के अजीबत्व का ज्ञान होना वो अजीब तत्व का ज्ञान है। तो आप तो उसे जीव मान रहे हैं, उसे तो बायोलॉजी बोल रहे, जीव विज्ञान नाम को मान रहे, उसको तो जीव मान के स्टडी कर रहे हो, तो उसे अजीब तो माना ही नहीं, तो असली बात तो जानी नहीं, और बाकी मुफ्त की डिटेल जान रहे हो, क्या लेना देना है। ठीक है ना कपूर सिंह जी, कि उसका अजीबत्व जानना चाहिए। सिद्धि जी, ये जीव नहीं है, बस कितना खत्म। और असली बात तो यहां तक है कि ऐसा जानकर तत्काल वहां से हटना चाहिए। और इसको फिर मैं वो अपना पुराने उदाहरण पर ले जाता हूं थोड़ा, कि ये मेरी पत्नी नहीं है, अपनी पत्नी के खोजने के लिए किसी महिला को देखे तो पाप नहीं है, लेकिन ये पता लगते ही कि ये मेरी पत्नी नहीं है तो एक सेकंड में उपयोग वहां से हट जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अरे वो कहे कि नहीं नहीं मेरी पत्नी तो नहीं है, लेकिन है तो सुंदर, जरा बात करके देख ले किसकी है, कौन है, कहां की है, क्या है। पर क्या मर गया, उसका नाम अजीब का जानना नहीं है, उसका नाम तो अजीब में रमना है, वो तो आसर तत्व है। वो बच्चे से मैं पत्नी पर इसलिए लाया हूं, आपको समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि दूसरे के बच्चे में इतना रस नहीं हो सकता है कि कौन का है किसका है मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, सुंदर है कि अगर खूबसूरत है कि नालायक है, लेकिन ये इसमें हो सकता है ना ऐसा विकल्प, फिर वो माफ नहीं होगा। वो ये कहे कि क्यों यहां को देख रहा है तू, और तुम की तरफ क्यों देखता है, कह मैं अपनी पत्नी को खोज रहा हूं, ये नहीं चलेगा। क्यों? वो ये पता लगते ही कि ये मेरी पत्नी नहीं है, उसका उपयोग प्रवृत्ति वृत्ति सब वहां से हटना चाहिए, है ना। तो ऊपर को जानना ये भी जरूरी है, और जानने के साथ में ये मैं नहीं हूं ये जानना जरूरी है, और मैं नहीं हूं बस इतना ही प्रयोजन था जानना, इससे आगे जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो आगे जानता तो होगा कि जानता तो है, नहीं तो फिर इतना कड़काई से मना करने की बात ही क्या थी। जानता है नहीं, लोग जानते हैं, डटके जानते हैं और उसी उसी को जानते रहते हैं। क्यों? समस्या इसकी नहीं है कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते निषेध क्यों किया जा रहा, प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, बोलो। प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है कि जीव की ऐसी वृत्ति है कि जिसे जाना उसमें जम जाता है, जहां मिली दो वहीं रहे सो, बस आराम से क्या करना है, जिसे जानने जाते हैं वही जानने ही रहे, जानने लग जाते हैं, उसी को देखने लग जाते हैं, उसी में जम जाते हैं, उसी में रम जाते हैं, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो कहते हैं कि जीव को जानना और जीव के साथ जिसे धोखे से जीव समझा जा सकता है उसे भी जानना, माने उसका नाम है अजीव को जानना। देखो इन्होंने लिखा कब कहां पढ़ रहे थे अपन, तो कि प्रथम तो दुख दूर करने में, मान सीधी सच्ची बात यह है कि सबका प्रयोजन तो दुख दूर करना है ना। ये बात वो पीछे सिद्ध करके आए हैं कि हम दुखी हैं, ये तो सिद्ध कर आए और हमें वो दुख दूर करना है, ये भी सिद्ध कर आए। तो वे कहते हैं उस दुख को दूर करने में सबसे पहले जिसका दुख दूर करना है उसे जानना चाहिए कि नहीं, उस आत्मा को जानना चाहिए। मन आपा और पर, मन निज और पर, और अपने में अपनापन और पराये में परायापन, इतना जानना अवश्य, इतना लिखा ना, का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये तो अनिवार्य कोर्स है कि इतनी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। क्या क्या, कितनी सी जानकारी हुई? आपा पर की माने मैं क्या हूं और पर क्या है, यानी ये मैं हूं और ये पर है, ये मुझसे भिन्न है, इतनी जानकारी अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो, वो कहते नहीं हो तो क्या चाहते, चले इसमें क्या है। लोगों का एक बड़ा विचित्र तर्क चलता है कि ये दवाई, दवाई का उदाहरण देते हैं कि हम दवाई के बारे में जाने और दवाई खाएं तो आराम करेगी, और नहीं जाने और दवाई खाएं तो आराम नहीं करेगी। ये बच्चे जो है सिर दर्द की दवाई खाना तो उनका सिर दर्द दूर नहीं होगा, वो नहीं जानते हैं। तो मैंने ऐसा कहते हैं कि जानना कोई जरूरी नहीं है, दवाई तो अपना गुण करेगी ही, ये तर्क है ना, अपन सबको जचता है, गले उतरता है। फिर वे कहते हैं ऐसे ही हमने उपवास किया तो हम आत्मा को जाने तो उपवास से निद्रा होगी, तब सा निद्रा होती क्या, नहीं उपवास तब से निद्रा होगी, और हम नहीं जाने और उपवास करें तो निद्रा नहीं होगी, जा कैसे माने। वो गोली है वो काम करेगी ना, उपवास नाम की गोली को काम करना चाहिए। मैंने आत्मा को जानने वाले के भी निद्रा होनी चाहिए और आत्मा को नहीं जाने उसके भी निद्रा होनी चाहिए, कपूर चंद जी ये तर्क है। समझ गए ना लोग, भाई उदाहरण देते हैं बहुत तालियां पिट जाती हैं, सही बात लगती है। अब यहां कह रहे कि ऐसा है नहीं, अब क्या है कि हमने खाना नहीं खाया उसका नाम उपवास, अगर हमने नहीं जाना तो भी खाना ही खाया नहीं। अब वो कहते खाना नहीं खाने से जो आत्मा को जानते हैं उनके भी निद्रा नहीं होती है, असली बात तो ये है। क्यों उसके निद्रा होती है उपवास के काल में, लेकिन वो खाना नहीं खाने के कारण नहीं होती है, वो तो आत्मा के अनुभव के कारण होती है, और तेरे को आत्मा का अनुभव नहीं होगा इसलिए तेरे को नहीं होगी, और वो लगता उसने भी नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया, उसे तो निद्रा नहीं हुई हो, मेरे को निद्रा नहीं हुई हो, तुम्हें निद्रा, भाई ये कैसे माने। तो उसे वो अन्याय लगता है, पूनमचंद जी साहब अन्याय क्यों लगता है कि दो ही भूखे रहे और एक को तो निद्रा हुई और एक को निद्रा नहीं हुई, और न्याय क्या है कि वो भूखे रहने के कारण दोनों को ही निद्रा नहीं हुई। समझे ना, भूखे रहने के कारण दोनों को ही निद्रा नहीं हुई, निद्रा तो हुई है काय के कारण, वो जो अंदर वो उपयोग था। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत मार्मिक, मेरे कोई 30-35 साल पहले का अनुभव है कि जब मैं निकला था 20-25 वर्ष का था तो अच्छा व्याख्यान देता था, और मैं तो कम से कम ये समझता था मैं बहुत बढ़िया व्याख्यान देता हूं, और ये मेरा धर्म के दर्शन वगैरह के व्याख्यान जो आजकल आप सुनते हैं तब भी मैं बिल्कुल हूबहू ऐसा ही देता था, मुझे याद है, ख्याल में आए ना, तो वो बढ़िया ही था ना। और अभी मान लिया कि और बुजुर्ग खेमचंद भाई आए और मैं आया, दो ही जने गए, बाबू भाई है, मैं तो आया। अब अभी मेरा व्याख्यान हुआ तो मैं समझता था कि खेमचंद भाई के व्याख्यान से बहुत ही बढ़िया था, समझ में आए ना आपके। लेकिन बस बाद में जब धन्यवाद दिया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, तो खेमचंद भाई माला है खेमचंद भाई को पढ़ेंगे, अपने ऐसे ही बैठे रहते, कोई नाम ही नहीं लेता। समझती नहीं, एक दफे तो ऐसी घटना घटी, आप आश्चर्य होगा। मैं विद्यार्थियों को बताता हूं, ये सीखने की बात है तुम्हारे लिए बहुत मरम की, कि एक गुना में था और शाम को पब्लिक मीटिंग होती थी और बिल्कुल जैन अजैन बहुत ऐसे आते थे और खेमचंद भाई भी अपने बोर्ड लेके बैठ जाते थे, कौन पंच सकार के स्वभाव और स्वभाव के साधन और सिद्धत्व मुझे सब याद है पूरे के पूरे अभी भी। तो ऐसा सन्नाटा छाए कि बिल्कुल किसी की समझ में एक अक्षर नहीं आए। तो वहां के जो कार्यकर्ता थे घबरा करके मेरे पास आए कि साहब बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है, अभी क्या करें क्या करें क्या करें। और अभी ठीक है उनका आधे घंटा हो जाता है, फिर आपको व्याख्यान करके बैठना पड़ेगा। मेरे पर उनको भरोसा था, मैं उनको व्याख्यान करता था रोजीना, तो वो जानते थे ये सब कार्यकर्ता मेरे को। तो यार ऐसे तो सही, ये बात तो सही नहीं है, मेरे को आपको आधे घंटे का भी नोटिस नहीं दिया और आप बोलते हो कि आपको तत्काल करो, ऐसा थोड़ी मैं ऐसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं साहब, हमें आप पर भरोसा है, हमें बहुत बहुत मना है बेचारे। बैठ गया मैं और मैंने समा बांधा दिया, जाग गई पूरी धमाधम खालियां बज गई, मतलब एकदम ऐसा हो गया समाज में देख करके। और फिर भी धन्यवाद तो नहीं दिया क्या, तो मेरे समझ में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि कोई जो सम्मान होता है कि धन्यवाद दिया जाता है वो तत्काल आज आध घंटे में पांच मिनट में आपने कुछ किया है वो उसका नहीं है, वो उसके सारे जीवन की तपश्चर्या का है। जो सारा जीवन उसने उसका वर्क है, जो उसने काम किया है, जो उसने योग्यता अर्जित की है, वो पांच मिनट का तुमने रटा करके बोल के कमाल पैदा कर दिया है वो उसका कमाल नहीं है, वो उसका है सम्मान। ख्याल में ना बालचंद जी, अभी ऐसा हो सकता है मेरे से बढ़िया व्याख्यान अभी मेरा विद्यार्थी बैठ जाए और उसका जब हो जाए बढ़िया, अरे आप धन्यवाद मेरे को ही देंगे। तो वो समझता कि ये क्या हो रहा, दादा को नाम ले रहे, मेरा तो बढ़िया व्याख्यान हुआ दादा से। ऐसा बहुतों को हो सकता है, मेरे को हुई थी ना ये बीमारी इसलिए मैं बताता हूं कि मेरे अनुभव से लाभ उठाओ, होना तो वही है जो होना है। तो भाई मेरे को जो धन्यवाद दिया जा रहा है ये आध घंटे के व्याख्यान से नहीं दिया जा रहा है, पिछले जो 40 वर्ष की कमाई है, मेरे जो 6000 पेज लिखे हैं, 8000 पेज का संपादन किया है, क्यों 40 लाख प्रतियां लोगों के हाथ में पहुंच गई हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, पढ़ा जो कुछ भी मेरा 40 वर्ष में मैंने किया है वो उसका है। वो ये पांच दो मिनट जो दो वाक्य बोले जा रहे हैं, जो मुकुंद भाई खड़े होकर दो वाक्य बोल रहे हैं, वो कोई दो मिनट के व्याख्यान पे नहीं बोल रहे हैं। दो मिनट के व्याख्यान से खुश होते तो मेरे को एक झुंझुना पुरस्कार में पकड़ा देते और ऊपर बैठ जाते गद्दी पर और मैं आगे हाथ जोड़ के सामने खड़ा होता और उनके पैर पड़ता और दो एक झुंझुना पकड़ा देते मुझे पुरस्कार के नाम पर। नहीं आया समझ में क्या आके समझ में आया कि नहीं। वो तत्काल के पांच मिनट के भाषण के प्रभाव से तो पुरस्कार मिलते हैं, वो देने वाले के तुम्हें पैर पड़ना पड़ते हैं। और कोई 2 रुपए की किताब पकड़ा देते हैं, कोई पकड़ा देते हैं पेन में जो कभी चले ही नहीं दान की गाय के दांत थोड़ी होते हैं रद्दी सद्दी पेन उठा लाते हैं जिसे नहीं बिकते हो और पकड़ा देते हैं इनको। है ना, क्यों मुकुंद भाई मेरे कहने यानी ये समझो ये वस्तु की स्थिति है, नहीं समझोगे तो तकलीफ पाओगे। ये समझना पड़ेगा कि वस्तु की स्थिति क्या है, वो समग्रता का है। वो कोई कभी बोले, कोई एक वाक्य बोले दो वाक्य बोले, वो एक एक क्रिया का नहीं है, भले ही एक क्रिया के नाम पर बोले। कहते हैं हमसे कि भाई डॉक्टर भायल की इस किताब के लिए हमने 1 लाख का पुरस्कार दिया, अकेली एक किताब में लिखता तो कोई 1 लाख का पुरस्कार देने वाला नहीं था। ये तो 50 किताबों के लिखने के बाद एक किताब लिखी तो पूरे 50 पूरे साहित्य के निर्माण का वो पुरस्कार है। इसलिए आजकल वो पद्धति निकल गई कि एक किताब को पुरस्कृत करने की। अब आजकल यही यही पद्धति शुरू हो गई क्या, कि उसके उसके समग्र जीवन को पुरस्कृत किया जा रहा है, ख्याल में आ गया। तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि वो जीव अजीव को जानना है, वो प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है कि जीव को कैसा जानना, अजीव को कैसा जानना, आश्रव को कैसा जानना, तो वो जानना क्यों प्रयोजनभूत है। और टोडर मल जी ये सिद्ध करके पहले ये सिद्ध करेंगे और बाद में बताएंगे कि एक इंद्रिय में इसकी गलती किस तरह की गलती पड़ी है अनादि से, और वो गलती कैसे मिटे ये बीमारी। तो ये चौथा अध्याय है, ये सातवें अध्याय से बहुत बारीक है। एक बहन अभी बोलती थी मेरे से बाहर चर्चा करते हुए कि वो सातवां अध्याय तो बहुत कठिन पड़ता, हमारी समझ में नहीं आता। ये चौथा अध्याय सातवें से ज्यादा कठिन है, लेकिन वो ये जो उसकी गहराई समझे तो नहीं समझा, ऊपर ऊपर समझ रहे तो नहीं समझ में आए, क्योंकि तो अगीत मिथ्यात्व है। वो तो ऐसी बीमारी है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरे को जुकाम हो गया, सारी दुनिया को दिखता है। और एक अंदर की अंदर अंदर पेट के अंदर गांठ पड़ गई, उसमें कैंसर हो गया है, उसकी जांच के लिए कितनी अंदर की प्रोसीजर है। दोनों फर्क है ना, ये अगीत मिथ्यात्व तो पेट के अंदर की कैंसर की जांच का बात की बात है, और वो तो जुकाम की बात है जो सारी दुनिया को छींची करते दिखता है कि जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। उसमें कौन से एक्सरे खिंचवाना है, करवाते हो डॉक्टर साहब आप जुकाम वाले का एक्सरे करवाते हो, ये कौन सी बीमारी है पता तो लगाएं, क्या लगाना है, वो तो दिख रही है ना दुनिया को छींची कर रहा है, वो तीन दिन में अपने आप ही खत्म हो जाती है, उसे कोई इलाज की भी जरूरत नहीं है। तो वो तो ऐसी बीमारी है जो सबको दिखती है ऊपर से, सातवें अध्याय की लिखा ना, देव सास गुरु की गलती, फलाने की गलती, ये गलती, पूजा में भक्ति, भक्ति में गलती, या तो यहां वो करते हैं बोलते हैं पाठ का अर्थ क्या समझते नहीं, लिखा ना भक्ति करते हैं तो यहां वहां देखते रहते हैं, ये तो ऐसी गलती है सारी दुनिया को दिखती है। ये सारी दुनिया को देखे उस गलती की बात नहीं है, यहां तो कहते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर की गांठ में कहीं कैंसर हो गया है जो पता नहीं लगता है, उसकी जांच की बात है। यदि कठिन है तो चौथा अध्याय बहुत ज्यादा कठिन है। वो कहते हैं गीत मिथ्या दर्शन अनादि से इस जीव को कैसे है, वो चर्चा यहां पर चल रही है। शायद समय हो गया है, ज्यादा हो गया क्या समय
जी? सुन कर वाणी जिनवर के मारे अर्थ ही न समाए जी,
संशय भ्रम और विपर्य नासा,
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 सम्यक बुद्धि उपजाए जी,
सम्यक बुद्धि उपजाए जी,
सुन कर वाणी जिनवर की मर हर्ष ही है।